मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, एकेडमी फॉर एक्सलेंस के इस ऑडियो फॉर एक्सलेंस में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। सच पूछिए तो इस ऑडियो फॉर एक्सलेंस के बारे में आप सबकी जितनी अच्छी प्रतिक्रियाएं मुझे मिल रही हैं मित्रों, निश्चित रूप से यह मेरे लिए भी उतनी ही एनर्जी का काम कर रही है जितनी कि शायद ये ऑडियो फॉर एक्सलेंस आप लोगों के लिए एनर्जी का काम कर रहा है। मित्रों, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और सच पूछे तो इससे भी आगे बढ़कर मैं आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। ये जो मेरा धन्यवाद और आभार व्यक्त करने का जो आधार है मित्रों, यह मात्र औपचारिकता नहीं है। औपचारिकता इसलिए नहीं है क्योंकि जो मैं बात कह रहा हूं वास्तव में वह मेरे बहुत गहरे अनुभव से निकली हुई बात है। गहरे अनुभव से निकली हुई बात कहने का मतलब यह कि आप सबसे जो प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, देखिए उनके दो आधार होते हैं या दो रास्ते होते हैं, दो तरह की वो चीजें होती हैं। पहला तो यह, उसमें आलोचना हो सकती है, कुछ सुझाव भी हो सकते हैं। निश्चित रूप से वो मुझे रास्ता दिखाते हैं, अपने आप को करेक्ट करने की बात मुझे कहते हैं। दूसरा ये होता है कि आप उस पर प्रशंसात्मक उक्ति देते हैं, वह मेरे उत्साह को बढ़ाती है। तो प्रतिक्रियाएं चाहे जैसी भी हों मेरे लिए बेहद काम की होती हैं, इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा ये अपेक्षा करता रहूंगा कि प्लीज आप अपनी प्रतिक्रियाओं से मुझे अवगत कराते रहें। और साथ ही फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यह भी अपेक्षा करूंगा कि आप भी जो कुछ भी करते हैं लोगों को इस बात की इजाजत दीजिए, लोगों से इस बात का अनुरोध कीजिए कि वो आपके किए गए काम की समीक्षा करें। मैं प्रशंसा करने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं आलोचना करने की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ समीक्षा करने की बात कर रहा हूं। समीक्षा का मतलब है कि जहां आलोचना की जाए वहां आलोचना हो, जहां सजेशन दिए जाने हैं वहां सजेशन हो, और जहां आलोचना होनी है वहां आलोचना हो, प्रशंसा होनी है वहां प्रशंसा हो, यानी जो होनी चाहिए वही हो, इसे मैं कहता हूं समीक्षा। तो दोस्तों, आइए हम आगे अपने जिस इशू को लेकर के हम बातें कर रहे थे उस पर आगे बढ़ें। और हमने शुरुआत की थी खासकर क्षमताओं से कि प्रकृति के द्वारा दी गई क्षमताएं होती हैं, कुछ अर्जित क्षमताएं होती हैं, कुछ ऐसी क्षमताएं होती हैं जिस पर स्थान, धन और परिवार का बहुत जबरदस्त प्रभाव होता है, जिसे आप एक तरीके से रिसोर्सेज मान सकते हैं। इस पर लेकर के हम लोगों ने अभी ढेर सारी बातें की हैं, और पिछले ऑडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि मैं अब आपसे जो एनर्जी के हमारे फोर चैनल्स हैं उनके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। तो दोस्तों, यह जो ऑडियो फॉर एक्सीलेंस है वो बेसिकली एनर्जी के जो हमारे फोर चैनल्स हैं उसी को डेडिकेटेड है। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं यह बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा फ्रेंड्स, और वो ये कि जब मैं एनर्जी के फोर चैनल्स की बात करता हूं तो आप ये मत मान करके चलिए कि ये फोर जो चैनल्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट सेपरेट तरीके से काम करते हैं, यानी कि ये कोई इलेक्ट्रिसिटी के वो चार तार नहीं है कि जिसमें एक में एक ही तरह का करंट है, दूसरे में दूसरी तरह का करंट है, तीसरे में तीसरी तरह का करंट है। ये नहर की तरह नहीं है कि जो चार नहरें पैरेलल बह रही हैं और चारों नहरों में अलग अलग का पानी आ रहा है। बेसिकली सच पूछे तो हमारी जिंदगी इस तरीके से काम करती ही नहीं है। हमारी जिंदगी तो एक विशाल नदी की तरह काम करती है। मैं समुद्र जानबूझ कर नहीं कर रहा हूं, नदी की तरह काम करती है कहने का मतलब है कि नदी की धारा आपको दिखाई देती है, बीच में वो धारा तटों के दोनों तटों के बीच में वह बह रही है, आपको धारा ही दिखाई देती है, उसमें पानी है आपको वो पानी दिखाई दे रहा है। जो प्रधानता होती है वो धारा की ही होती है, नाम जो होता है वो धारा का ही होता है, और गीत भी जो लिखे जाते हैं वो धारा को ही लिखे जाते हैं, आराधना भी जो होती है वो धारा की ही होती है, और अगर आपको सिंचाई भी करनी है तो आप उस धारा को ही मोड़ते हैं, पार भी हम धारा को ही करते हैं, दीप दान भी हम धाराओं को ही करते हैं, और पुष्प भी धाराओं में ही चढ़ाते हैं, डुबकियां भी धाराओं में ही लगाते हैं, ये तो होता ही है। लेकिन मित्रों, जो उस धारा में जो पानी आ रहा है, जिससे वो धारा बन रही है, वो कहां से आ रही है? क्या वो आपको दिखाई देती है? धारा आपको दिखाई दे रही है, लेकिन जिनसे धारा बनी है वो आपको दिखाई नहीं देती। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कैचमेंट एरिया का नाम सुना होगा। जब हम नदियों के बारे में बात करते हैं तो उसका एक कैचमेंट एरिया होता है। या आप कुएं को देखिए, कुएं में कहां से पानी आता है? ठीक है, बरसात के दिनों में तो कुएं में बरसात का पानी भर जाता है और इसके बाद तो बरसात खत्म हो जाती है और कुआं साल भर तक आपको पानी देता रहता है। तो अब कहीं ना कहीं और सोर्स से पानी तो आ रहा होगा, अदरवाइज वो पानी खत्म हो गया होता, लेकिन आपको कुएं में आने वाला वो पानी दिखाई नहीं देता। दोस्तों, ठीक वही नदियों के साथ भी होता है। जो कैचमेंट एरिया होता है वहां से लगातार नदियां उस पानी को शोषित करती रहती है, वहां से लगातार पानी नदियों में आता रहता है और वो कैचमेंट एरिया इतना बड़ा होता है कि अगर बूंद बूंद भी वहां से कंट्रीब्यूट हो तो नदी की धारा सदा प्रवाहिनी बनी रहती है, धारा खत्म नहीं होती है। यह बात अलग है कि किसी मौसम विशेष में वो धारा थोड़ी सक्रिय हो जाए, थोड़ी सी कम गहरी हो जाए, लेकिन पानी वहां होता है, धारा वहां होती है, धारा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। और जिसका जितना बड़ा कैचमेंट एरिया होगा स्वाभाविक रूप से वह धारा उतनी ज्यादा गहरी होगी, उतनी ज्यादा चौड़ी भी होगी और उतनी ही ज्यादा सतत प्रवाहित होने वाली भी होगी। ये डिपेंड करेगा उसके कैचमेंट एरिया के ऊपर। मित्रों, हमारी जो एनर्जी होती है, याद रखिए, वो भी बिल्कुल उसी तरीके से होती है। मैंने एनर्जी के चार चैनल्स आपको बताए हैं, उसमें एक मैंने आपको कहा था फिजिकल एनर्जी, शरीर की ताकत, राइट। ये जो शरीर की ताकत है, जिसमें भी शरीर की ताकत की प्रधानता होगी, तो जो शरीर की ताकत की प्रधानता है उसे आप नदी की दिखाई देने वाली धारा मान सकते हैं। एक पहलवान है, तो पहलवान में जो सबसे बड़ी बात होगी, जो सबसे बड़ी एनर्जी होगी, वो फिजिकल एनर्जी होगी, तभी वो पहलवान बन सकता है। मरियल आदमी कम से कम पहलवानी तो नहीं ही कर सकता, फिर चाहे उसके पास बाकी तीनों एनर्जी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, वो उसके पास बहुत अच्छी मेंटल एनर्जी है, उसके पास बहुत अच्छी इमोशनल एनर्जी भी है, स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत हाई लेवल की है, लेकिन वो पहलवानी तो नहीं कर सकता। लेकिन क्या केवल जिसके पास फिजिकल एनर्जी ही होगी वही पहलवानी कर लेगा? क्या शारीरिक शक्ति के दम पर ही पहलवानी हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोमिनेंट फिजिकल एनर्जी है, लेकिन उसके साथ ही साथ मेंटल एनर्जी भी काम कर रही है, इमोशनल एनर्जी भी काम कर रही है और स्पिरिचुअल एनर्जी भी काम कर रही है। हां, इनका अनुपात कितना कितना है ये बात अलग है, लेकिन ये सारी एनर्जीज काम करती हैं। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि जो पहलवान है उसका स्पिरिचुअल एनर्जी से क्या लेना देना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि जब स्पिरिचुअलिटी की नाम का नाम आता है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में धर्म, भगवान, समाधि, ध्यान, मेडिटेशन, कर्मकांड, यज्ञ, वेद पुराण, गीता बाइबल, को पता नहीं इस तरह की कौन कौन से बातें दिमाग में घूमने लगती हैं और लगता है कि जिनको इन ग्रंथों का ज्ञान होगा वही स्पिरिचुअल होगा, जो भगवा वस्त्र पहनेगा, दाढ़ी बढ़ाए रखेगा वही स्पिरिचुअल होगा, जो पूजा पाठ करेगा, कीर्तन करेगा, यज्ञ करेगा वही स्पिरिचुअल होगा, जो घर छोड़ छाड़ करके जंगलों में चला जाएगा उसी के पास स्पिरिचुअल एनर्जी होगी। दिस इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है मित्रों। जो स्पिरिचुअल एनर्जी है इसे आप सुपरफाइन फॉर्म ऑफ इमोशनल एनर्जी कह सकते हैं, उनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे यहां कहने का मतलब यह है कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी भी होती है वो सबके पास है, आपके पास भी है। आप अगर ह्यूमन बीइंग हैं और हैं ही तो आप स्पिरिचुअल एनर्जी से रहित हो ही नहीं सकते। ये बात अलग है कि उसका कंटेंट बहुत कम है और जो थोड़ा सा कंटेंट भी है वो बहुत दबा हुआ है, उसको ज्यादा मौका नहीं मिल रहा है, बहुत थोड़ा सा मौका मिल जाता है और कभी कभी मौका मिल जाता है, हमेशा मौका नहीं मिलता, यह हो सकता है। लेकिन आप यह मत सोचिएगा कि उस पहलवान के पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होगी क्योंकि वो पहलवान है, वो तो मोटी बुद्धि का है। बिल्कुल नहीं, जनरली होता यही है कि लोग पहलवानों को मोटी बुद्धि का मान लेते, शरीर मोटा होता है ना तो लगता है कि मोटे शरीर में मोटी बुद्धि रहती होगी, तो क्या पतले शरीर में पतली बुद्धि रहती है? क्या बड़ी तीखी बुद्धि रहती है? ऐसा कुछ नहीं है, एक कहावत बनी हुई है। तो मित्रों, अभी तक मैंने जो बात आपसे कही है वो सिंपल सी ये बात है कि एक पर्टिकुलर टाइम में या एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर एक पर्टिकुलर एनर्जी प्रोमिनेंटली एग्जिस्ट करती है। जो पहलवान है उसमें फिजिकल एनर्जी प्रोमिनेंट है और रिमेनिंग जो थ्री एनर्जीज हैं वो थोड़े थोड़े अनुपात में काम करती हैं। जरूरी नहीं कि ये तीनों का अनुपात समान रूप से हो, इनमें भी डिफरेंट होगा। इसके बाद है दूसरी मेंटल एनर्जी, जो मानसिक शक्ति होती है। अब स्वाभाविक तौर पर मैंने थोड़ा सा आपको पहले इशारा भी किया था कि स्वाभाविक तौर पर जो प्रोफेसर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो भी एक बौद्धिक काम कर रहे हैं, उनके पास मेंटल एनर्जी ज्यादा होती है और दूसरी एनर्जीज कम होंगी। अब जैसे अब आप देखिए कि स्टीफन हॉकिंग्स को देखिए, आपको मालूम है स्टीफन हॉकिंग्स आज दुनिया के सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं और बहुत यंग एज में उनको बुरी तरह से बीमारी हो गई थी और वो उसके बाद से ही वो एक तरह से व्हील चेयर पर कैद है, लेकिन उनका उनकी मेंटल एनर्जी, उनका दिमाग इतना अलर्ट है कि आज भी वो नए नए सिद्धांत स्थापित करते हैं, तो मेंटल एनर्जी उनमें पर प्रोमिनेंट है। लेकिन फिर से मैं जो बात कहना चाहूंगा, आप ये कतई मत सोचिएगा कि वो सिर्फ मेंटल एनर्जी के दम पर ही काम कर रहे हैं। दो तरह की चीजें होती हैं दोस्तों, एक तो होता है इंटेलेक्चुअलिटी, इंटेलेक्चुअलिटी मतलब बहुत ही वो आदमी प्रखर बौद्धिक है, तर्क उसके पास जबरदस्त है, स्मरण शक्ति उसके पास जबरदस्त है, वो किसी को भी वाद विवाद में हरा सकता है, प्रखरता है, ये बौद्धिक प्रखरता है, ये मेंटल एनर्जी का प्रमाण है। लेकिन जब राइटिंग की बात आएगी, जब एक वैज्ञानिक बनने की बात आएगी, तब केवल मेंटल एनर्जी काम नहीं करेगी। याद रखिए वैज्ञानिक और बौद्धिक में यह फर्क होता है। मैं वैज्ञानिक किस यंत्र बनाने वाले वैज्ञानिक की बात नहीं कर रहा हूं, सिद्धांतों को स्थापित करने वाले वैज्ञानिक की बात कर रहा हूं, लाइक आइंस्टीन। आइंस्टीन ने क्या किया है? कोई लैब नहीं, कुछ नहीं, जो कुछ भी काम किया है मानसिक स्तर पर किया है, अपने दिमाग से किया है। तो ऐसे समय पर हमें यह लगने लगता है कि यह मेंटल एनर्जी है, लेकिन जो नई खोजें होती हैं, जो इन्वेंशंस होते हैं, जो थ्योरीज देते हैं, जो प्रिंसिपल्स देते हैं, वो मेंटल एनर्जी से नहीं आती है। सच पूछे तो उसमें इमोशनल एनर्जी और उससे भी आगे बढ़कर के स्पिरिचुअल एनर्जी का कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आइंस्टीन को जब आप पढ़ेंगे, उनकी चाहे आप बायोग्राफी पढ़िए या उनके स्टेटमेंट पढ़िए, तो वो आपको पता लगेगा कि वो व्यक्ति कितने स्पिरिचुअल थे। तब आपको सही मायने में स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन भी पता लगेगी। स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं है, वो तो माध्यम है, माध्यम है, क्योंकि वहां हम जाते हैं, बहुत शांति मिलती है, साफ सुथरा होता है, शांत वातावरण होता है, मन को बड़ा सुकून मिलता है, तो वहां उसकी संभावना बढ़ जाती है, स्पिरिचुअलिटी की संभावना बढ़ जाती है। तो वो डेफिनेटली वो एक शक्ति के केंद्र होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जो बिना भाव के, बिना बोध के, बिना इमोशंस के वहां जाएगा और भ्रमण करके चला आएगा तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी उसको मिल जाएगी। तब तो फिर वहां के आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो सबसे टॉप स्पिरिचुअलिटी के टॉप लेवल पर होते, या हो सकता है वहां जो काम करने वाले लोग हैं वो स्पिरिचुअलिटी के टॉप पर होते, चाहे कोई भी हो, चाहे झाड़ू लगाने वाला हो, पोछा लगाने वाला हो, चौकीदार हो, तो स्पिरिचुअलिटी के बहुत हाइट पर होते हैं। ऐसा नहीं है, ये बातें असली में मैं थोड़ी सी एनालिटिकल फॉर्म में इसलिए कह रहा हूं ताकि आप इसे एक मल्टी डायमेंशनल के तौर पर समझ सकें, विविध आयाम के तौर पर समझ सकें, क्योंकि ये काम ही ऐसे करती है, ये काम इकलौते नहीं करती, ये नदी की धारा का निर्माण करती है। और नदी की धारा का निर्माण कैसे होता है मैंने थोड़े से संक्षिप्त रूप में आपको बताया है। तो मित्रों दूसरी है मानसिक एनर्जी। अब आप देखिए कि जो शारीरिक एनर्जी है और जो मानसिक एनर्जी है वो कैसे काम करती है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। मान लीजिए एक पहलवान है और वो ओलंपिक में पहलवानी के फाइनल दौर में पहुंच गया है। अब आप देखिए कि ये जो पहलवान है जो दोनों फाइनल के दौर में पहुंचे हैं, इससे 5-6 राउंड और जीतते जीतते वो यहां तक पहुंचे होंगे। आप किसी से मिलिए, ऐसे खिलाड़ी से मिलिए, तो वो बताएगा कि पहले दौर में उसको उतना डर नहीं लग रहा था। डर तो लग रहा था लेकिन पहले दौर में उतना डर नहीं लग रहा था, उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम थी। सेंसिटिविटी कम थी इसका मतलब है कि मानसिक ऊर्जा उसके पास ज्यादा थी। देखिए सेंसिटिविटी और मानसिक ऊर्जा का संबंध थोड़ा सा उल्टा होता है। जब आप बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं तो मानसिक रूप से आप कमजोर हो जाते हैं, मन में भय लगने लगता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर हार गए तो क्या होगा, फिर तो हम बाहर ही निकल जाएंगे। तो वो सेंसिटिविटी होती है। फर्स्ट स्टेज पर सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम रहेगी, सेकेंड स्टेज पर सेंसिटिविटी बढ़ेगी, अब वो सेंसिटिविटी लगातार बढ़ती जाएगी और जब फाइनल स्टेज पर वो पहुंचेगा, अगर फाइनल राउंड होना है तब उसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई लेवल पर होगी कि अब तो जीवन और मरण का सवाल है और अगर हम यहां हार गए, चूक गए, तो इतिहास में जो नाम दर्ज होने की संभावना बनी थी वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर 4 साल के बाद ओलंपिक होगा और उस समय पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, हम होंगे या नहीं होंगे, दिमाग में तो ये बात आती ही है। तो संवेदनशीलता बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाती है और जब संवेदनशीलता बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाती है तो मेंटल एनर्जी वीक होने लगती है। और मजेदार बात है कि अगर आपकी मेंटल एनर्जी वीक होगी तो आप याद रखिए कि फिजिकल एनर्जी आपको कभी भी उस हाई लेवल तक आपका साथ नहीं दे सकती। मित्र, ये तो आप लोग व्यावहारिक जीवन में एक दिन में न जाने कितनी बार महसूस करते होंगे। जब आपके मन में कोई निराशा का भाव आता है तो आप देखिए कि कैसे शरीर तुरंत लस्त पस्त हो जाता है, सुस्त पड़ जाता है। लेकिन जब आप जोश में भरे होते हैं, आप बहुत ही आशावादी हैं, आपको चीजें अच्छी दिखाई देती हैं, तब शरीर में एक अलग तरीके का जोश होता है। तो अब आप शरीर से कुछ नहीं कर रहे, शरीर की स्थिति बिल्कुल वही है जो मेंटल, जो हमारी फिजिकल एनर्जी का बेस है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन ये जो आपका मेंटल, जो माइंड है, जिसको मैं एक तरह से सप्लाई या पावर हाउस कहता हूं, जो हमारी शक्ति है, जो हमारी एनर्जी है, उसका जो पावर हाउस है वो हमारा दिमाग है। यही हमारे शरीर को हर जगह पावर सप्लाई करता है। तो जब ये पावर सप्लाई करने वाला जो हाउस है यही गड़बड़ हो गया है और इसी से सप्लाई ठीक ठाक नहीं हो रही है, तो अब आप बताइए कि ये शरीर भी कैसे काम करेगा, इसको भी तो ऊर्जा चाहिए। तो वो ऊर्जा उसको दिमाग से मिलती है और पता लगा कि जो हाई सेंसिटिविटी फाइनल राउंड तक पहुंचते पहुंचते इतनी हो गई है कि मेंटल एनर्जी कमजोर पड़ गई है। अब आप इस द्वंद को थोड़ा सा दोस्तों महसूस करने की कोशिश कीजिए। मैं समझने की कोशिश करने की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज मेरे इन शब्द पे गौर कीजिए, मैं कह रहा हूं महसूस करने की कोशिश कीजिए। चीजों को कभी आप लोग महसूस भी किया कीजिए। समझना समझाना तो बहुत हो गया है और हर कोई समझता समझाता ही है। आप फिल्में देखने जाते हैं, फिल्मों को महसूस कीजिए। आप फिल्मों के गाने सुनते हैं, गाने को महसूस कीजिए। आप एक चित्र देखते हैं, उस चित्र में चित्र बनाने वाले ने अपनी जान डाल दी है, अपने इमोशंस डाल दिए हैं, उनको पकड़ने की कोशिश कीजिए। आप कहानी पढ़ते हैं, पात्रों को जीने की कोशिश कीजिए, उसके पात्र को आप अपने अंदर शामिल कर लीजिए, वही पात्र आप खुद बन जाइए और जीने की कोशिश कीजिए। बहुत गजब की थेरेपी होती है दोस्तों ये, इससे बड़ी थेरेपी मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी हो सकती है। करके तो देखिए, तब आपके सामने फिर एक नए डायमेंशंस इन चीजों के खुलते चले जाएंगे, एक नए आयाम खुलते चले जाएंगे, आपको एक नया क्षितिज दिखाई देने लगेगा कि अरे बाप रे, चीजें ये भी होती हैं, चीजें इस तरीके से भी होती हैं। आप करके देखिए। सच पूछे तो ये ऑडियो ऑफ एक्सीलेंस का फायदा आप तभी उठा पाएंगे जब आप इन चीजों को व्यवहार में लाएं, क्योंकि अदरवाइज ज्ञान तो बहुत कुछ बट रहा है, दिया जा रहा है, किताबें हैं, चैनल्स हैं, बहुत चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान है, इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसका वही टुकड़ा आपका होता है जिसे आप महसूस करते हैं, जिसे आप आत्मसात करते हैं, जिसे आप व्यवहार में लाते हैं। अदरवाइज सूखे रेगिस्तान की यात्रा होती है। एक रेगिस्तान की भी जो यात्रा एक गोल घेरे में की जा रही है, जहां से हम शुरू करते हैं वहीं पर उसका अंत होता है और फिर से एक नई खोज के तहत शुरू करते हैं और फिर से उसका अंत वहीं पर होता है। तो मित्र, थोड़ा सा महसूस करने की आदत डालिए कि वो फाइनल में पहुंचा हुआ खिलाड़ी है किस तरह का महसूस कर रहा होगा। उसके सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि हाई सेंसिटिविटी आ गई है, लेकिन उसे अपने को कंट्रोल भी करना है कि मेंटल एनर्जी कम ना पड़े। और फिर खेल शुरू हो गया है, दांव पेच लग रहे हैं, नंबर दिए जा रहे हैं, विसिल्स बज रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोगों के दिल की धड़कनें रुक रही हैं, लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। इन सारी चीजों को वो जो पहलवान है वो महसूस कर रहा है, क्योंकि याद रखिए कि वो जो पहलवान है उसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब वो अखाड़े में खेल रहा है तो उसका नाम उसके देश के साथ जुड़ा हुआ है। वो जो पहलवान है वो विजेंद्र नहीं है, वो जो पहलवान है वो हिंदुस्तान है, भारत का पहलवान। और जो मेडल मिलेगा खिलाड़ी को तो मिलेगा ही, लेकिन जब टैली में नाम लिखा जाएगा तो भारत के सामने मेडल का नाम होगा कि वो गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रांज है या क्या है। चलिए फाइनल मैच है तो ब्रांज तो होगा ही नहीं। तो मित्रों, जब उसके सामने, अब आप उसके संकटों को जानने समझने की कोशिश कीजिए, उसको महसूस करने की कोशिश कीजिए, खासकर आप महसूस कर सकें, इसीलिए मैं इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग पर जा रहा हूं। और आप देखेंगे कि इसको अगर आप थोड़ी सा भी महसूस कर सकेंगे, आपके अंदर थोड़ी सी भी उथल पुथल मचेगी, तब आप मान करके चलिए कि नहीं, अभी आपके पास भाव बोध है, यानी कि अभी आपके पास जो इमोशनल एनर्जी का जो चैनल है वो काम कर रहा है। काम तो करता ही है लेकिन जंग लग जाता है, नहीं, वो काम कर रहा है। और जब तक आप अपने इमोशनल एनर्जी को नहीं, के चैनल को नहीं खोलेंगे, याद रखिए कि आप स्पिरिचुअल एनर्जी तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी का जो चैनल का जो रास्ता होता है, वहां तक पहुंचने का जो रास्ता होता है वो इमोशनल एनर्जी से ही होकर गुजरता है। ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इमोशंस जब सुपरफाइन हो जाते हैं तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस पर हम बातें करेंगे। दोस्तों, जब तालियां बज रही हैं, फिर उसे एक क्षण में ये भी महसूस होता है कि नहीं, ये जो तालियां हैं ये उसके लिए बज रही हैं, मेरे लिए नहीं है। जो शाबाशियां दी जा रही हैं वो उसको दी जा रही हैं, मेरे लिए नहीं है। उसको मालूम है कि दूसरे के कितने नंबर हो गए हैं और मैं लगातार पिछड़ता जा रहा हूं। और जब वो लगातार पिछड़ता जा रहा है तो उसके सामने फिर से एक चैलेंज आता है कि नहीं, मुझे कवर करना है, मुझे जीतना है, जबकि मैं पिछड़ गया हूं। और जैसे ही उसको एहसास होता है कि मैं पिछड़ गया हूं, वैसे ही उसकी मेंटल एनर्जी और वीक हो जाती है, क्योंकि वो हताश हो रहा है, निराश हो रहा है। एक ऐसे समय में उसकी मेंटल एनर्जी और वीक होती है जबकि उसे और अधिक मेंटल एनर्जी की जरूरत है। आप उसके द्वंद को, उसके संकट को, उसके दुख को, उसकी परेशानी को समझने की कोशिश कीजिए, महसूस करने की कोशिश कीजिए कि वो जो बेचारा खिलाड़ी है, जो पहलवान है, कितने भयानक संकट से गुजरा हुआ है। याद कर लीजिए आप मैरी कॉम फिल्म के कोई दृश्य, अगर आपने वो फिल्म देखी हो तो, कि वो हारने वाली है लेकिन उसे जीतना है, क्योंकि जीतना उसके लिए बहुत जरूरी है, उसको पैसे मिलने हैं और वो पैसे उसके लिए बेहद मायने रखते हैं। हारना वो अफोर्ड कर ही नहीं सकती और हार रही है, लेकिन जीतना है, कैसे संभव होगा। इसीलिए मित्रों, बोलचाल की भाषा में आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये क्या है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसको कहा जाता है जो अंत तक हारता ही नहीं है, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। बीच बीच में हजारों बार उसे इस बात की अनुभूति हो रही है कि मैं हार रहा हूं, इसके बावजूद जो लक्ष्य उसका होता है वो यही कि नहीं मुझे जीतना है, और अंत तक वो इसी कोशिश में रहता है कि नहीं मुझे जीतना है। लेकिन एक को तो हारना ही है, एक उसमें से हारता भी है, और हारने के बाद दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ऐसा नहीं कि मुंह मोड़े और चले गए कि अच्छा तुमने मुझे हरा दिया, और ये अपना इतरा रहे कि देखा तुमको मैंने हरा दिया, नहीं, वो दोनों हाथ मिलाते हैं। अच्छे खिलाड़ी शाबाशी भी देते हैं, हारने वाला शाबाशी देता है कि तुमने बहुत अच्छा खेला, और जीतने वाला शाबाशी देता है कि कोई बात नहीं, तुमने मुझे बहुत टफ फाइट दी। और इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है जो कभी हारता नहीं है, हार कर भी हारता नहीं है, इसलिए कि अभी हारा है ना, जीतने के लिए आगे समय है। वो गिरेगा और फिर उठेगा और फिर से तैयारी में लग जाएगा, कभी तो कभी जीतेगा भी। तो जो हार को भी उसी भाव से स्वीकार करता है जिस भाव से वो जीत को स्वीकार करता है, ये है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इसीलिए जो स्पोर्ट्समैन होते हैं आप देखेंगे कि अपनी लाइफ में बहुत कम उनमें निराशा के दौर आते हैं। ऐसा नहीं कि लाइफ में निराशा आती ही नहीं, आती है, लेकिन उसको संभाल लेते हैं क्योंकि उनके सिस्टम में, उनके मैकेनिज्म में वो इनबिल्ट हो चुका होता है। इसीलिए मित्रों, मैं तो सच पूछिए तो इस बात का बहुत बड़ा समर्थक हूं कि जो भी बच्चे होते हैं, जो पेरेंट्स, ये बात मेरी इस पेरेंट्स के लिए है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वे अपने बच्चों को खेलों में जरूर शामिल करें। और जिस खेलों में मैं शामिल करने की बात कह रहा हूं वो कंप्यूटर के गेम्स नहीं है, फील्ड के गेम्स हैं। वो फील्ड में जाएं, दौड़े धूपे लड़े झगड़े संघर्ष करें, हारे जीते उठे गिरे। ऐसे जो बच्चे होंगे जब युवा बनेंगे तो एक अलग तरीके के ही बच्चे होंगे, उनमें वो निराशा घर नहीं करेगी, वो इतनी जल्दी हताश नहीं होंगे, वो सफल ही होंगे, जहां भी जाएंगे सफल होंगे, क्योंकि उनके अंदर वो फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी का जो आपस में तालमेल है वो बैठ चुका है, उन्हें बैठाना आ गया है। वो जानते हैं कि निराशा के घोर क्षणों में जब चारों ओर बादल ही बादल छाए हुए हों, सूरज का नामो निशान नहीं हो, घनघोर बारिश हो रही हो, बिजलियां चमक रही हों, बादल गड़गड़ा रहे हों, ऐसे दौर में वो जानते हैं कि दौर कुछ भी हो सूरज निकलता ही निकलता है, सूरज कभी मरता नहीं है। उनमें ये धैर्य होता है, उनमें ये हिम्मत होती है कि वो सूरज की प्रतीक्षा कर सके और फिर सूरज निकलता है। ये प्रकृति का नियम है कि सूरज निकलता है। वो केवल इसे किताबों में नहीं पढ़ करके समझते हैं, वो इसे जी कर समझते हैं, खेल के मैदानों में समझते हैं, संघर्ष करके समझते हैं। तो वो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है, उनकी चेतना का हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों, वो जो पहलवान है, फिर से आप महसूस करने की कोशिश कीजिए कि उसे जीतना है और जीतने की संभावना नहीं है, लेकिन वो अंत तक संघर्ष करता है और खेल इस बात के प्रमाण है। मुझे नहीं मालूम कि आप कौन सा खेल देखते हैं, लेकिन ज्यादातर क्रिकेट तो देखते ही हैं। कई बार क्रिकेट का खेल देखते समय आप ये घोषणा कर देते हैं कि अब तो ये टीम हार गई, अब ये नहीं जीत सकती, लेकिन आप देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद ही पासा कुछ ऐसा पलटता है कि वो टीम जीत चुकी होती है और आपको लगता है कि अरे वाह क्या कमाल कर दिया, और अगले दिन अखबार भरे होते हैं उसकी प्रशंसा में, क्योंकि वो हार के बाद मिली हुई जीत है। उस जीत ने असंभव को संभव करके दिखाया है, यानी कि संभावना वहां भी है। हार के निकट पहुंचने के बावजूद जीत हासिल करने की संभावना बची रहती है। तो ये जो संभावना की जो पतली सी जो डोर है, ये पतली सी डोर क्या है, ये डोर कैसे आपके पकड़ में आएगी, जो छूट रहा था वो कैसे आपकी मुट्ठी में आ गया हमेशा हमेशा के लिए, कौन सी ताकत थी जिसने सहारा दिया। याद रखे मित्रों, वहां कला काम नहीं आती है, वहां फिजिकल एनर्जी काम नहीं आती, फिजिकल एनर्जी के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन वहां जो काम आती है वो आती है मेंटल एनर्जी। नो डाउट इस मेंटल एनर्जी के साथ साथ इमोशनल और स्पिरिचुअल एनर्जी भी होती है, उसे मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जानबूझकर के अभी इमोशनल और स्पिरिचुअल एनर्जी को किनारे करके चल रहा हूं मित्रों, क्योंकि जो समय अपना रुख दिखा रहा है, अपना रूप दिखा रहा है, वो मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं इन चारों को एक साथ लेकर के चलूं और एक ही ऑडियो में ये पूरा हो। मैं स्पिरिचुअल एनर्जी और इमोशनल एनर्जी के बारे में नेक्स्ट ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में चर्चा करूंगा, इसलिए यहां मैं केवल दो एनर्जियों पर ही फोकस कर रहा हूं, वो है फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी। तो मित्रों, जब हम अपनी क्षमताओं के बारे में निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि इन दो एनर्जीज में हमारे पास कौन सी एनर्जी प्रोमिनेंट है। पर प्रोमिनेंट की बात कर रहा हूं मैं, दोनों के बराबर बराबर होने या दोनों के घिचपिच हो जाने या घुलमिल जाने की बात नहीं कर रहा हूं। दोनों में आपको देखना होगा कि कौन सी एनर्जी आपके पास ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि उसमें आप ज्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे। पहलवान बट नेचुरल है कि तब तक वो पहलवानी नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास फिजिकल एनर्जी अच्छी नहीं होगी। एक खिलाड़ी तब तक अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता जब तक कि उसके पास फिजिकल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि वो प्रोमिनेंट है। एक मरियल व्यक्ति खिलाड़ी नहीं बन सकता, जैसा मैंने पहले कहा। न्यूटन, कहा जाता है कि जब न्यूटन पैदा हुए थे तो बेहद कमजोर थे, किसी को लग ही नहीं रहा था कि ये बच्चा जीवित भी रह जाएगा, बिल्कुल पतले दुबले से, बिल्कुल मरियल से जीने की संभावना नहीं थी। बाद में यही न्यूटन साइंटिस्ट बने और खासकर जो फिजिक्स है उसके एक तरह से बेस रखने वाले न्यूटन बने। अब ये जो न्यूटन है, फिजिकल एनर्जी के मामले में तो वीक रहे, लेकिन उन्होंने अपने मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल एनर्जी को इतने हाई लेवल पर पहुंचा दिया कि वो विश्व के एक तरह से इतिहास बन गए। तो अगर वो न्यूटन चाहते कि मैं खिलाड़ी बनूं, चाहे उनकी इच्छा कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, तो उनके लिए संभावित नहीं था। कुछ सीमा तक समझौते हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर हम सचिन तेंदुलकर को लें, तो आप देखते हैं कि उनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं थी, जबकि क्रिकेट के खेल में हाइट कहीं ना कहीं मायने रखती है। कुछ खेल तो ऐसे होते हैं जिनमें हाइट ही मायने रखती है। मान लीजिए आप बास्केटबॉल के खिलाड़ी बनना चाह रहे हैं, आप वॉलीबॉल के खिलाड़ी बनना चाह रहे हैं, तो बट नेचुरल कि उसमें हाइट मायने रखती है, क्योंकि वहां जहां आपको बॉल गोल में डालना है वहां उसके लिए हाइट की जरूरत है। तो जहां प्रोमिनेंटली फिजिकल है वहां तो आप समझौता न करें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती जहां थोड़े बहुत लेवल पर समझौता किया जा सकता है, जिसमें मैं सचिन तेंदुलकर को लेकर के चलता हूं। गावस्कर को भी आप देखिए तो बहुत ज्यादा हाइट नहीं थी, जबकि हम दूसरे खिलाड़ियों को देखते हैं तो उनकी काफी अच्छी हाइट होती, चाहे फिर वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो, हाइट का तो फायदा मिलता ही है और इसके बारे में आप मुझसे कई गुना ज्यादा जानते होंगे। चाहे रन के लिए दौड़ना हो तो उनके कदम लंबे होंगे, चाहे बॉलिंग करनी हो तो उनका जो बॉल और जमीन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो अपेक्षाकृत ज्यादा होगा, चाहे फील्डिंग करनी हो तो वहां भी दौड़ने का सवाल है, फिर चाहे कैच लेना हो वहां भी थोड़ा सा हाइट को फायदा मिलता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि अगर वो नहीं है तो कुछ हो ही नहीं सकता है, वहां समझौते का एक थोड़ा सा गैप होता है, लेकिन वो केवल थोड़ा सा ही होता है। बहुत ज्यादा गैप होने पर फिर उसके बारे में विचार किया जाना चाहिए, फिर चाहे हमारी इच्छा कुछ भी क्यों ना हो। तो सचिन तेंदुलकर हाइट में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अपनी उस कमी को, हाइट की कमी को उन्होंने दूसरे माध्यम से पूरा किया। एनर्जी के दूसरे चैनल्स को उन्होंने ओपन किया, उसका ज्यादा इस्तेमाल किया, यहां तक कि अभ्यास भी ज्यादा किए और नतीजा यह हुआ कि उनका नाम विश्व के महानतम क्रिकेट खिलाड़ियों में दर्ज हो गया। तो मित्रों, इस ऑडियो फॉर एक्सलेंस में मैंने एनर्जी के चार लेवल्स में से दो लेवल्स के बारे में आपसे बातें की हैं, फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी। और मुझे विश्वास है कि शायद इस दो एनर्जी के बारे में, इसे सुनने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। दोनों के आपसी संबंधों को भी आप समझ गए होंगे, न केवल समझ ही गए होंगे बल्कि इन्हें महसूस भी करने लगे होंगे। अब दो चैनल्स हमारे पास और बचे हैं, इमोशनल एनर्जी के और स्पिरिचुअल एनर्जी के। हम इन पर बातें करेंगे, ये कैसे काम करते हैं इन पर बातें करेंगे, और भी जो चीजें जरूरी होंगी हम उन पर बातें करेंगे। आप अपनी तरफ से अगर और कुछ जानना चाहते हैं, आपकी कुछ जिज्ञासाएं हैं, तो प्लीज आप मुझे अपने ईमेल भेजें ताकि मैं आपकी उन जिज्ञासाओं को भी शांत करने की कोशिश कर सकूं। तो मित्रों, अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के ऑडियो फॉर एक्सीलेंस को अब यहीं समाप्त करने की आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।